ओम शांति। तारों से सजे गगन जैसे, फूलों से सजे चमन जैसे, खुशबू से सजे पवन जैसे, आदरणीय भाई जी आपसे सजे हमारा जीवन ऐसे, आदरणीय आदर्शनीय मार्गदर्शनीय रमेश भाई जी को हार्दिक सुस्वागत, शिव स्वागत, शुभ स्वागत है। भाई जी, ही हैज पास्ड कॉमर्स डिग्री, लॉ डिग्री एंड फर्स्ट क्लास फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एग्जामिनेशन इन 1956 and started his practice as chartered accountant from 1957 and became fully associated with this Vishwavidyalaya for more than 50 years and was responsible for introducing various educational activities of this Vishwavidyalaya. Bhai ji is an additional secretary general of Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwavidyalaya and looking after its finance, properties, legal and general administration. Bhai ji is the managing trustee of World Renewal Spiritual Trust. Bhai ji is the founder secretary of Brahma Kumaris Educational Society. Honorable Bhai ji is a member of governing board and organizing secretary of Rajyoga Education and Research Foundation. Bhai ji is a chairperson of jurist wing of RERF and Bhai ji is the chairperson of spiritual application and research center, that is PARC. Respected Ramesh Bhai ji is an excellent author and has written many books, and his book Pure Money Economics is widely known for his deeper understanding of economics and its blending with philosophy of life. Bhai ji has also written many articles and also dramas and dance dramas. He was specially awarded by United Nations and its allied NGO institutions from USA and UK for international understanding and excellence in financial management. Bhai ji has visited almost all countries of the world to give God's message. हम अभी भाई जी को नम्र निवेदन करेंगे कल का बाबा का मुरली के बारे में जो गुह्य रहस्य है उसके बारे में भाई जी सुनेंगे। उसके पहले बसुराज भाई जी आदरणीय रमेश भाई जी को माला पहना कर आदरणीय रमेश भाई जी को हार्दिक सुस्वागत, शिव स्वागत, शुभ स्वागत जोर से ताली बजाकर भाई जी को हम स्वागत करेंगे। स्वागत स्वागत है। ओम शांति।
मैं हमेशा ही बहनों को कहता हूं कि आप मेरा असली परिचय नहीं देते हैं। असली परिचय तो यही है कि मैं एक आत्मा हूं और परमात्मा के संतान हूं, जैसे आप सब भी आत्माएं हैं और परमात्मा के संतान है। बाकी ये सब जो भी परिचय के अंदर जो कारोबार है, वो तो जो जिम्मेदारी मिली हुई है बाबा की तरफ से, उस बाबा की तरफ से मिली हुई जिम्मेदारी को निभाने का कार्य करता हूँ। करण करावन हर बाबा जो है वो करण हर काम बच्चों के द्वारा अपना कार्य कराता रहे, इसके कारण जो भी है जैसा भी है इस प्रकार से करते रहते हैं। हर एक अपना अपना कर्तव्य करते रहते हैं, उसमें मैंने क्या बड़ी बात किया। फिर भी बहनों बताते रहते हो, बहनों का हमारे प्रति स्नेह है इसके कारण बताते हैं, तो मैं भी कहता हूँ ठीक है, जो जिसकी भावना जैसी होती है उसको हमको चलाना पड़ता है। बाकी हमको ड्यूटी मिली हुई है पिछले कहीं तीन चार साल से कि बाबा की अव्यक्त मुरली होती है, उसके बाद दूसरे दिन उसके ऊपर चर्चा करने का, तो इसके कारण मैं मुरली पूरी लिखता भी हूँ और टाइमिंग भी लोड करता रहता हूँ कि बाबा कितने बजे आए, कितने बजे मुरली शुरू किया है, कितने बजे विदाई लिया, इस प्रकार से तो मैंने कल का भी नोट किया, मैं मेरी घड़ी के हिसाब से कहता हूँ, मेरी घड़ी और यहाँ की घड़ी में शायद फर्क है थोड़ा, मेरी घड़ी और इस घड़ी में 4 मिनट का फर्क है, मैं अपनी घड़ी के हिसाब से लिखता हूँ। उसके कारण गुलजार दादी स्टेज पर बैठे 8:03 पर और फिर ध्यान में गए, बाबा के पास गए, सूक्ष्म वतन में गए 8:10 और फिर बाप दादा की पधरामणी हो गई 8:13 को और फिर बाबा ने जो मुरली शुरू किया 8:21 को बाबा ने मुरली शुरू किया। आप सबने जो भी कारोबार देखा, बाबा के मुरली भी सुनी, उसके बाद बाबा का स्टेज के ऊपर भी कारोबार चला, दादियों से मिले, हम बच्चों से भी मिले, बाबा ने भोग भी स्वीकार किया और फिर 8:53 पर बाबा गुलजार दादी के तन से विदाई लिया। 2 मिनट गुलजार दादी के साथ ऊपर बाबा ने बात किया हुआ होगा और 8:55 जो है बाबा जो है बाबा ने गुलजार दादी को नीचे भेज दिया। गुलजार दादी 8:55 में मतलब बाबा के पास से वापस आई। इस प्रकार से देखा जाए तो गुलजार दादी के तन में बाबा 8:13 को आए और 8:53 को गए, माना करीब 40 मिनट हम बच्चों के साथ रहे। 8:13 से 8:53 40 मिनट समझो के हमारे पास रहे। ये भी बाबा बताते हैं कि कैसे समय का, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, समय का कारोबार और समय का सदुपयोग और कम समय में ज्यादा कारोबार कैसे करें। हम सब एक बात में एक्सपर्ट हैं, ज्यादा समय में कम काम करें वो हम लोग जानते हैं। इस प्रकार से ये सब दादी जानकी भी कहती है कि हमारे हाथ में छोटी बात को बड़ी कैसे किया जाए और बड़ी बात को छोटी कैसे किया जाए। तो मैंने जानकी दादी को कहा, दादी छोटी बात को बड़ी करने में आप दादी आए एक्सपर्ट है, परंतु बड़ी बात छोटी बड़ी बात को छोटी करने में आप दादी एक्सपर्ट है, हम सब एक्सपर्ट है, छोटी बात को भी बहुत बड़ी कर लेते हैं और क्योंकि सारी जिंदगी याद रखते हैं इतने तक उसकी बड़ी कर देते हैं। वो हमारी स्पेशलिटी है कि छोटी बात को सारी जिंदगी तक याद करना, भूलते ही नहीं है, हम भूतकाल को भूलते ही नहीं है, इस प्रकार की हमारी पुरुषार्थ की अवस्था होती है। तो कल बाबा ने जो कहा उसका जो हमारे राजू भाई ने मुरली का सार टाइटल दिया हुआ है, कोई भी बात आए उसे बाप को देखकर आप मुस्कुराते रहो, कोई भी बात आए उसको बाप को देख करके हम मुस्कुराते रहो, यही बात बड़ी बात है। बाप को देना, बाबा कहते हैं कि बाप आया है उठाने के लिए, आपके बोझ उठाने के लिए, आप बाप को दे दो बात, पर तो क्या करते हैं हम बाप को कहते हैं, बाबा नहीं 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 आपको हम कैसे तकलीफ दे रहे, कैसे हम तकलीफ दे रहे। मैंने बाबा को एक बार साकार बाबा को कहा था कि बाबा हम छोटी छोटी बात में आपको क्यों पूछे, आप बहुत इतने बड़े बाबा हो, आपके पास बहुत सारी दुनिया की जिम्मेदारी है और इतने बड़े यज्ञ की जिम्मेदारी है, हम छोटी छोटी बात पर आपको क्यों तकलीफ दे रहे। तो ब्रह्मा बाबा ने मुझे सीधा ही सवाल पूछा, मैंने ऐसे कौन सी बात में कहा हुआ है कि छोटी छोटी बात पर आप मुझे पूछो नहीं, मैं तो यही कहता हूं कि कदम कदम पर आप श्रीमत पर चलो, ऐसा ही कहा है ना। और किसी के कोई भी सेंटर की मुरली में ऐसा आया है कि छोटी छोटी बातें बाबा को नहीं पूछो, सिर्फ बड़ी बातें पूछो, ऐसा नहीं कहा है। तो इसलिए बाबा ने भी कहा कि मुझे छोटी छोटी बात में पूछने में मैंने तो मना नहीं किया है, आप लोग नहीं पूछते हैं, बाकी आप पूछते हैं तो मैं जवाब देने के लिए जिम्मेवार हूँ, और इसलिए छोटी छोटी बात, क्योंकि बाबा ने ये भी कहा छोटी छोटी बात को आप छोटी समझ लेते हो ना, इसलिए आपका उसके पीछे बहुत टाइम बर्बाद होता है। अगर बाप से पूछ लेते हैं तो बाप की श्रीमत पर आप छोटी बात को भी जल्दी से निपटा सकेंगे, आप छोटी बात को भी बहुत बड़ी कर देते हैं। तो इस प्रकार से बाप को देने का जो भी अक्कल जो होना चाहिए, जो भी ये होशियारी जो होनी चाहिए, ये भावनाएं जो होनी चाहिए, ये जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए ना, मैं समझता हूँ बहुत कम भाई बहन जो है वो बाप के ऊपर जिम्मेदारी रख देते हैं। बाबा ने तो कहा हुआ है कि अगर बच्चे जो है बाप के ऊपर मदद छोड़ देते हैं तो बाप मदद करने के लिए तैयार है, कलमी बाबा के मुरली का सार यही है कि बाप को देकर कोई भी बात आती है, कोई भी समस्या आती है, बाप को दे दो तो बहुत अच्छी बात होती है। बाप को देने से क्या होता है, जैसे बाप उस समस्या को हल करते हैं, उस प्रकार का हमको भी हल करने का अभ्यास हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। मैं आपको एक मिसाल बताऊं, जब यहाँ हापुड़ में घमसान हुआ था तो मातेश्वरी जी उस टाइम पर दिल्ली पंजाब हापुड़ आज सब जगह पर चक्कर लगा करके आए थे, और रात्रि क्लास में उन्होंने हापुड़ में क्या समस्या हुई है, सन्य अपने आर्य समाजी भाई बहनों ने क्या किया, ये सारी बातें सुनाई। उसके बाद मैं बाबा के पास गया, मैंने कहा बाबा मातेश्वरी जी ने जो हापुड़ की बात बताई है तो बहुत सोचने जैसी बात है, आपको उसके ऊपर टेंशन नहीं होता है? मेरे को तो टेंशन हो गया, तो आपको टेंशन होता है या नहीं होता है? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि नहीं, मुझे टेंशन नहीं होता है। मैंने कहा आपको क्यों नहीं होता है टेंशन, आपके पास कौन सी ऐसी युक्ति है? क्योंकि आप जानते हैं दुनिया के अंदर टेंशन के कारण कईयों को डिप्रेशन आ जाता है, बहुत कुछ ऐसा हो जाता है, कईयों को आत्महत्या करने की भी चिंता होती है, करने के पुरुषार्थ करने की, कहीं सामने में भी सामने वालों की भी हत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं जोश में आकर के। तो इस प्रकार से हमने बाबा को पूछा कि आपने कौन से ऐसी युक्ति किया हुआ है जिसके कारण आपको टेंशन नहीं होता है? तो बाबा ने मुझे डायरेक्ट कहा, मैं इसलिए कहता हूँ शब्द डायरेक्ट, कारण कि डायरेक्ट सुनने के बाद अगर मैं उस प्रकार से नहीं करूँ तो मैं बाबा का गुनहगार हो जाऊंगा कि बाबा ने कहा डायरेक्ट, फिर भी मैंने बाप की श्रीमत को नहीं माना। बाबा ने कहा बच्चे, बाप जो है, मतलब ब्रह्मा बाप जो है, वो जानता है कि जिस प्रकार से 5000 वर्ष पहले स्थापना हुई थी उस प्रकार से हो रही है। हमारी मातेश्वरी जी भी कहती थी बनी बनाई बन रही और न कुछ बने, मतलब इसका जो बनी हुई है, जो 5000 वर्ष पहले हुई बात है वो भी अभी हो रही है। 5000 वर्ष पहले जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, जो कार्य हुआ उस प्रकार से अभी हो रहा है, तो हमको टेंशन किस बात का? इसलिए अगर 5000 वर्ष का ज्ञान के ऊपर आपका पूरा भरोसा हो, तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने कहा कि मुझे ड्रामा के कार्य के ऊपर, भावी के ऊपर बहुत ही विश्वास है कि 5000 वर्ष पहले जो बात हुई उस प्रकार से अभी भी हो रही है, कल की भी बात है। कईयों के मन में संकल्प चल रहा मुरली के अंदर कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्यों बाबा जल्दी आए, जल्दी गए, देरी से आए, जल्दी गए, इस प्रकार से कईयों का संकल्प चला हुआ होगा। मुझे किसी ने पूछा आपको संकल्प चला, मैंने कहा नहीं, मुझे संकल्प नहीं चला। क्यों? मैंने कहा मुझे ब्रह्मा बाबा का महावाक्य याद है कि जैसे 5000 वर्ष पहले स्थापना हुई थी, जिस प्रकार से स्थापना का कार्य हुआ था उस प्रकार से अभी भी हो रहा है। कोई नई बात हो ही नहीं रही है, नई बात हो तो उसका आश्चर्य हो। जो बात कल की बात है, बाबा ने इसमें बहुत सुंदर हमको एक बात बताई, आप 5000 वर्ष मत समझो, बोलो कल की बात, कल, आज और कल, इतना शॉर्ट में उसको कर दो ना, कंडेंस कर दो तो क्या हो जाएगा? 5000 वर्ष पहले की बात नहीं, कल की बात है, जो कल किया हुआ है उसको आज करना है, और आज जो किया है उसको फिर से कल करने का है, तो फिर क्या होता है? टेंशन नहीं होता है। हमारी माता यहाँ बैठी हुई, रोटी बेलने की बात आती है, कल जैसे रोटी बेली आज रोटी बेलती है तो क्या टेंशन होता है? जो भी कल खाना पकाया इस प्रकार से आज खाना पकाते हैं, नौकरी करने वाले कल जैसे नौकरी किया आज इस प्रकार से नौकरी करता है तो टेंशन नहीं होता है। तो इस प्रकार से कल की बात को कल की आज भी ऐसा हो रहा है इस प्रकार से समझ ले तो टेंशन नहीं होता है। बाकी इसके ऊपर विचार करेंगे। तो बाबा ने कल देखो कितना सुंदर मुरली की शुरुआत किया कि सभी खुशनुमा बच्चों को देख बाप दादा बहुत बहुत खुश हो रहे हैं, वाह मेरे खुशनसीब खुशनुमा बच्चे वाह। देखो बाबा, परमात्मा हम बच्चों की महिमा करते हैं, जब परमात्मा हमारी महिमा करते हैं उसका अर्थ ये भी है कि हम बच्चों ऐसा रहे, ऐसा बने, इसके लिए बाबा कहते हैं खुशनसीब और खुशनुमा बच्चे। इस प्रकार से हमको याद रहना चाहिए भाई, हमारा भाग्य के बारे में होना चाहिए कि हमारे जैसा खुश नसीब दुनिया में और कोई नहीं हो सकता है। एक साकार मुरली है, उसमें बाबा ने कहा हुआ है कि तुम ज्यादा खुश नसीब हो, इंग्लैंड की महारानी जो है उनसे भी तुम्हारा भाग्य जो है ज्यादा श्रेष्ठ है, इसलिए तुम इंग्लैंड की महारानी से भी ज्यादा खुश नसीब हो। तो जब बाबा ने मुरली चलाई तो उसके बाद मैं बाबा के पास गया कि बाबा ऐसा कैसे हो सकता है, इंग्लैंड की महारानी जो उस जमाने में, तो आप जानते हैं एक जमाना ऐसा था कि इंग्लैंड के जो ब्रिटिश साम्राज्य था उसके ऊपर कभी भी कोई ना कोई जगह पर सूर्य रहता ही था, सूर्य अस्त होता ही नहीं था। तो इस प्रकार से इतना सुंदर इतना बड़ा भाग्य साम्राज्य के साम्राज्ञी और उसके उनसे हमारा भाग्य श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। तो बाबा बहुत सुंदर वकील भी है। बाबा ने एक ही वाक्य कहा भाग्य के बारे में, बाबा ने कहा कि उसके भाग्य में क्या सतयुग त्रेता में आने का होगा। आप समझे बाबा का प्रश्न, इंग्लैंड की महारानी जो भी है या जो भी आज के जमाने के जो भी श्रेष्ठ धनाढ्य या सत्ताधीश पुरुष है या बहने जो भी है उनके भाग्य में सतयुग की दुनिया त्रेता युग की दुनिया का अनुभव करने का भाग्य है। हमने कहा नहीं है। तो हमने कहा, बाबा ने कहा तो फिर तुम्हारा भाग्य श्रेष्ठ है कि तुम बच्चों को सत्य बाबा मिल गया। एक तो उनको बाबा नहीं मिलता है, दूसरा उनको सतयुग की दुनिया दैवी और त्रेता युग की दुनिया में आने का चांस नहीं मिलेगा। उनका जो भी पार्ट होगा वो पार्ट द्वापर युग से चलेगा, तुम्हारा पार्ट उनसे ज्यादा है, ज्यादा श्रेष्ठ दुनिया में श्रेष्ठ पार्ट है। तो क्यों आप अक्सर नहीं समझते हो कि हमारा पार्ट जो है, हम इतना खुश नसीब है कि हमारा पार्ट इंग्लैंड की रानी को हो या तो भारत का राष्ट्रपति को हो या तो अमेरिका का राष्ट्रपति को हो, इनसे हमारा भाग्य श्रेष्ठ है। अगर इस प्रकार का हमारा भाग्य का अगर हमको नशा रहे, हमारे भाग्य का अगर नशा रहे, खुश नसीब हम रहे, तो कोई भी समस्या हमारे सामने नहीं आ सकती है। सभी समस्याएं छोटी छोटी हो जाएंगी। इसलिए हमारे हाथों में है हमारे भाग्य की महिमा को स्वीकार करने का। क्योंकि हमने कई बार कहा है कि जब योग की प्रदर्शनी बनाई तो लास्ट प्रदर्शनी का चित्र जो है ब्रह्मा बाबा को हमने कहा कि बाबा आप वो चित्र बना करके और उसकी लिखत नीचे की बना करके भेजो। तो बाबा ने उसकी नीचे की लिखत बना करके भेजी, बहुत सुंदर बात लिखी। बाबा ने कहा, लिखा था उसके अंदर कि आपका भाग्य आपके हाथों में है, आपका भाग्य आपके हाथों में है, आपका भाग्य न कोई और बना सकता है न कोई और बिगाड़ सकता है, आप अपने भाग्य के मास्टर भाग्य विधाता हो। ये बाबा का महावाक्य अगर याद रखे हम सब कि हमारा भाग्य का मास्टर भाग्य विधाता हम ही है। बाबा ने दूसरी मुरली में भी कहा है कि मैं बच्चों को ज्ञान दे सकता हूं पर तो पुरुषार्थ तो आप बच्चों को करना पड़ेगा। बाबा कोई हम बच्चों की तरफ से पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। अंग्रेजी में भी कहा गया, एक फिलोसोफर ने कहा है, यू कैन टेक हॉर्स टू द रिवर बट यू कैन नॉट ड्रिंक वाटर ऑन बिहाफ ऑफ योर हॉर्स, हॉर्स मस्ट ड्रिंक वाटर फॉर इटसेल्फ। एक घोड़ा जो होता है वो घोड़ा, उसको पानी पिलाने का है तो आप उसको नदी किनारे लेके जा सकते हो, पर तो पानी पीने का काम तो घोड़े को ही करना पड़ेगा। आप पानी पियो और घोड़े के पेट में पानी चला जाएगा, कैसे होगा। तो इसलिए हमको हमारा भाग्य बनाना है और इसलिए ही हम यहाँ आए हुए हैं। हम क्यों यहाँ आए हैं, कहीं मैं सवाल पूछता हूँ आप क्यों यहाँ आए हैं, तो कहीं जवाब देते हैं। मैं कहता हूँ सिंपल जवाब रखो ना, हम यहाँ आए हैं अपना पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध श्रेष्ठ में श्रेष्ठ बनाने के लिए आए हैं और सतयुग की दैवी दुनिया के अंदर हमारा श्रेष्ठ भाग्य हो, श्रेष्ठ पद हो और श्रेष्ठ कारोबार हो हमारा, इसलिए आए हुए हैं। बाकी दुनिया की झंझट से हमारा क्या फायदा, क्या मतलब। तो इस प्रकार से बाबा ने भी कहा, कल खुश नसीब बच्चों के बारे में कहा और बाबा ने ये भी कहा कि सभी के दिल में हम बाप दादा समाया हुआ है, हर बच्चे के चेहरे से स्नेह की खुशबू आ रही है और सदा ये हर बच्चा खुश आबाद रहने वाली आत्मा है, खुश और आबाद। हम बाप दादा एक एक बच्चों की मुस्कुराती हुई सूरत को देख खुश है, सदा ऐसे ही मुस्कुराते खुशी में नाचते बढ़ते चलो चढ़ा चढ़ो चलो और बढ़ाते चलो। खुशी में नाचते बढ़ते चलो चला और बढ़ाते रहो, इस प्रकार से बाबा ने कहा है। और बाबा ने एक छोटी बात लास्ट में जो कही कि हर बच्चे के मस्तक में बाप दादा चमकते हुए सितारों को देख रहे हैं। चमकते हुए सितारों की बात, बाबा की बात जो है ये कभी बाबा ने शुरू की आपको मालूम नहीं होगा, याद नहीं होगा। बाबा जब अव्यक्त हो गए, साकार ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए और 21 जनवरी 69 को पहली अव्यक्त मुरली गुलजार दादी के द्वारा उनके तन के अंदर परमात्मा ने प्रवेश कर करके गुरु मुरली चलाई, उसके अंदर बाबा ने कहा हुआ है कि अब तक तो आपके सन्मुख ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा था और उसकी रोशनी में आप बच्चों ने कार्य किया, अब ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा भी छुप गया है, चले नहीं गए हैं परंतु छुप गए हैं और हम सब देख रहे हैं कि आप सितारे बच्चे, आप सितारों बच्चे की सृष्टि रूपी रंगमंच के ऊपर क्या रिमझिम होती है और कौन सा सितारा ज्यादा चमक रहा है वो बाप दादा देखना चाहता है, ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा भी देखना चाहता है। तो हम सितारों की रिमझिम जो भी है उसको बाबा देखना चाहता है और इसलिए बाबा ने आगे इसमें 21 तारीख की मुरली में ये कहा कि हम बाबा जानना चाहते हैं कि हरेक के ताज में कितने कितने जगह हीरे भरे हुए हैं, हीरा जड़ी ताज है, जितना ज्यादा जिम्मेदारी इतने ज्यादा हीरे और रहेंगे और उसके आधार पर उतना ज्यादा श्रेष्ठ पद हो सकता है। तो इस प्रकार से ज्ञान सितारों की रिमझिम जो है वो बाबा देखना चाहता है, इसलिए कल बाबा ने कहा हर बच्चा जो है बाबा हर चमकते हुए सितारों को देख रहे हैं। तो इसलिए प्रश्न यही है कि क्या हम चमकते हुए सितारे हैं? अभी अभी जानकी दादी के क्लास जो आते हैं ना रोजरी में आता है, दादी जानकी ने विदेशियों को बहुत एक सवाल सीधा पूछा कि आप सब अभी अपने वर्तमान के पुरुषार्थ से संतुष्ट हो? मैं आपको नहीं पूछ रहा हूँ, दादी जानकी ने पूछा था डबल फॉरेनर्स को कि आप सभी अपने वर्तमान के पुरुषार्थ से संतुष्ट हो? जो संतुष्ट नहीं हो हाथ खड़ा कर, ऐसा दादी ने कहा। तो किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, माना कि सब संतुष्ट है। तो दादी ने दूसरा सवाल पूछ लिया, आप कहाँ तक संतुष्ट है? आप ऐसा समझते हो कि आपके वर्तमान के पुरुषार्थ के आधार पर हम श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण जैसा श्रेष्ठ भाग्य हम निर्माण करने के लिए हमारे सिवा और कोई नहीं बन सकता है, इतनी दृढ़ संकल्पता के साथ आप कह सकते हो? तो किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। तो दादी ने कहा कि अगर वर्तमान पुरुषार्थ के आधार पर आप श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण पद प्राप्त करने जैसा पुरुषार्थ आपका नहीं हो रहा है तो फिर आप अपने वर्तमान के पुरुषार्थ के द्वारा संतुष्ट हो ऐसा कैसे कहते हो? ये तो एक आत्मवंचना हो गया, आप अपने आप को अपने आप के साथ बिट्रेयल करते हैं, आप अपने आप के साथ धोखा देते हैं और अपने आप को समझते हैं कि हमको तो हमारे जैसा भाग्य अपने वर्तमान के पुरुषार्थ से हम संतुष्ट हैं, इस प्रकार से कैसे होगा? मैंने कई बार आपको कहा हुआ है कि बाबा ने साकार मुरली ने कहा कि कोई भी बच्चा मेरे पास आकर के कहे कि बाबा हमारा वर्तमान अब तक का पुरुषार्थ के द्वारा मेरा पद क्या हो सकता है वो बताए, तो बाबा ने कहा कि मैं बताने लिए तैयार हूँ। तो फिर मैं बाबा के पास पहुंच गया, मैंने कहा आज तो आपके पास लाइन लग जाएंगी, क्योंकि है चाहता है आप ही यहाँ जितने भी बैठे हुए वो चाहते होंगे कि हमारा वर्तमान का अब तक का जो भी पुरुषार्थ जो कहा सम टोटल ऑफ अवर एफर्ट्स वर्तमान तक का अब तक का जितना पुरुषार्थ है उसके द्वारा अगर आज हमारा शरीर छूट जाए तो हमारा क्या पद हो सकता है, ये सब की जानने की इच्छा होगी। तो मैंने बाबा को कहा आज तो आपके पास माउंट आबू से आबू रोड तक की लाइन लग जाएंगी। बाबा ने कहा कि बच्चे बाप जाने बाप क्या, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, बाप जानता है, कोई मेरे पास नहीं आएगा, कोई मेरे पास नहीं आएंगे, क्योंकि सभी को मन में ये मालूम है कि हमारा जो पुरुषार्थ जो है हम क्या बन सकते हैं। वो बात को वास्तविकता के साथ, वास्तविकता के साथ वास्तविक बनकर के वास्तविकता को स्वीकार करना वो बहुत कठिन बात है। हम ख्वाब में रहना चाहते हैं परंतु वास्तविकता को फेस करने के लिए, हम भावनाओं में रहना चाहते हैं परंतु वास्तविकता के अंदर नहीं आ सकते। इसलिए वास्तव में बाबा ने कहा हुआ है, वास्तविकता और भावना दोनों का बैलेंस होना चाहिए। इसके बदले में हमारे जीवन में भावनाएं जो ज्यादा है, वास्तविकता रियलिटीज जो भी है, वास्तविकता जो भी है, जैसे रियलिटीज ऑफ सिचुएशन, रियलिटीज ऑफ अवर इकोनॉमिक सिचुएशन, आजादी जो भी है, उसको फेस करने के लिए हम तैयार नहीं है, ये हकीकत है। तो इसलिए कल बाबा ने जो कहा, चमकते हुए सितारों की बात कही, फिर बाबा ने बहुत सुंदर एक बात बता दिया कि आज शरीर के कारण सभी बच्चों के आह्वान से बाप दादा सबसे मिलन मना रहे हैं। बाबा ने एक शब्द में कह दिया कि बाबा को आने में क्यों देरी हुई और जल्दी क्यों जाएगा, एक शब्द में कह दिया आज शरीर के कारण। अब क्या होता है, बाबा ने तो कह दिया शरीर के कारण, तो सबके मन में संकल्प चलने लगे क्या हो गया, कैसे हो गया होगा, और सबके मन में संकल्प चलने लगे। बाबा ने एक बार बता दिया शरीर के कारण जो बता दिया, एक बात हो गई बात, फिर हम ज्यादा संकल्प विकल्प में क्यों जावे, ये हमारा काम है क्या? गुलजार दादी को क्या हुआ, अगर समझो हमको मालूम पड़े तो क्या हम गुलजार दादी की बीमारी को दूर कर सकते हैं? हम कोई डॉक्टर है क्या? हमारे पास उसका कोई इलाज है क्या? तो पूरी बात जानने से हमको क्या फायदा। आज भी देखिए, अब अखबार पढ़ते हैं, सोनिया गांधी जो है वो अमेरिका गई, ऑपरेशन कराया, सब सुनते हो, कोई भी अखबार में आया कि सोनिया गांधी को क्या बीमारी थी? मैंने पूरा ही अभ्यास किया था, अपने जवाहरलाल नेहरू को क्या बीमारी हुई उसके बारे में कभी भी अखबार वालों ने नहीं लिखा। इन्होंने शरीर छोड़ा तभी भी नहीं बताया कौन सी बीमारी के द्वारा हुआ। इस प्रकार से अखबार वालों भी जो जिसके शरीर के अंदर बीमारी होगी उसका काम करता रहता है, तो फिर हम क्यों कर जो बताते ही नहीं है, आते ही नहीं है। हमारे यहाँ तो क्या होता है, सब वही बात को बताते हैं। गुलजार दादी का पहला ऑपरेशन हुआ और जो केमोथेरेपी हुई थी उसके कारण बाल निकल जाते हैं, तो बाल निकल जाते तो शरीर के ऊपर, मुख के ऊपर स्कार्फ बांध करके आकर के भी मुरली चलाई। उनका कितना बड़ा त्याग था, उसका उसको विस्तार में समझाना चाहिए, समझना चाहिए। उसके बदले में लोगों ने क्या कर दिया, उसका वही फोटो करके अपने घर में रखा। तो मैंने अमेरिका में, यूरोप में गया था, रोटरडैम सेंटर पर, तो वहां पर भी गुलजार दादी का वही फोटो रखा था, स्कार्फ सिर पर बांधा हुआ। मैंने कहा दिस इज नॉट रियलिटी, क्यों आप इसको रखते हो? बाकी अभी वर्तमान के जो है स्कार्फ नहीं है, अभी का जो चेहरा जो है उसका फोटो रखो ना। उनकी बीमारी थी, उसने बीमारी को फेस किया, उसके कारण उनको जो स्कार्फ बांधना था वो बांध लिया, आप क्यों फिक्र करते हो? और चित्र निकाल दो। मैंने जानकी दादी को, फिर मैं लंदन गया तो मैंने बताया दादी को, दादी ने कहा रमेश आपकी बात सही है, बीमार जो थे उनको मालूम है हम बीमार थे, बीमार होते हुए भी इस बात को अप्रिशिएट करो कि बीमार होते हुए भी आपके सामने अगर ऐसा परिस्थिति आती, आपके सिर के बाल चले गए होते और आपको स्कार्फ बांध करके यहाँ सेवा करने के लिए आना होता तो कईयों को देह अभिमान आ जाता, वो आते भी नहीं, हम कैसे आएंगे, कैसे करेंगे, सबके सामने कैसे जाएंगे। गुलजार दादी ने देह अभिमान के बदले में देही अभिमानी बनकर के वो कार्य किया। कल भी देखो शरीर बराबर नहीं था तो भी आकर के बैठे, बाबा के पास गए, बाबा ने आकर के मुरली चलाई, बाबा ने उस तन के अंदर बता दिया। आपको मालूम नहीं है क्योंकि आप लोग पुराने इतने नहीं है, 1982-83 में यहाँ पर मुख्य भाई बहनों की भर्ती थी और उसमें अव्यक्त बाप दादा पधारे थे। उस टाइम पर 84 याद नहीं है एग्जैक्ट वर्ष, उसमें वो बात कही थी बाबा ने कि आगे चल करके इस तन जिसमें मैं आता हूँ उसको बीमारी आएगी, बड़ी बीमारी आएगी, परंतु बाप है, बाप ने रथ को संभाल लेगा, परंतु ये बीमारी जो है उसके कारण नहीं आती, परंतु बाप उसके तन में आते हैं और उस तन की जो शक्ति जो है, जो प्रभाव जो है, वो प्रभाव इस शरीर को इतना संभाल नहीं सकेगा, इसके कारण उसको ये बीमारी आ सकती है, परंतु बाप उसको संभाल लेगा। मैंने बाबा को उसी टाइम पर भी पूछा कि बाबा आप ब्रह्मा बाबा के तन में आते हो तो क्या ब्रह्मा बाबा का शरीर जो है पुरुष का है और मजबूत है, इसके लिए ब्रह्मा बाबा के तन में आना जाना मेरे लिए सहज होता है, परंतु ये बहन है और उसके तन में आकर उसका शरीर नाजुक है, तो इसके कारण ऐसी बीमारी उसको हो सकती है। तो इस प्रकार से होता है आना जाना। कईयों के पिछले टाइम पर बाबा बीच में चले गए, अब सबने देखा था ना। कईयों के मन में संकल्प चला, कईयों के पूछा, कई हमारे पास आए कि बाबा बीच में क्यों चले गए, बीच में क्यों चले गए। तो मैंने उनको कहा, शंकराचार्य की बात कही, शंकराचार्य ने सृष्टि की रचना कैसे हुई उसके बारे में लिखा हुआ है, रचनानुपत्तिस्य नानुमानम, मतलब रचना जो परमात्मा ने कैसे किया, क्यों किया, उसके बारे में हम क्या, हम तो रचना है, वो रचयिता है, रचयिता ने रचना रची उसके बारे में उसको हम कैसे पूछ सकते हैं। फिर भी शंकराचार्य ने जवाब दिया कि लीलावत तो कैवल्यम, लीला करने के लिए भगवान ने सृष्टि रची, ताकि सृष्टि रूपी लीला चलती रहे। तो फिर सवाल पूछता है शंका वाला कि लीला करने की इच्छा क्यों हुई। तब शंकराचार्य ने कहा, रचना शंकराचार्य ने कहा कि नहीं, उसको लीला करने की इच्छा क्यों हुई हम कैसे पूछ सकते, हम तो रचना है, वो रचयिता है, रचयिता को किस प्रकार से अपनी रचना को रचना है और किस प्रकार से उनका प्रारब्ध बना करके उनका जीवन बनाना है, वो मालिक है, उसके हाथ में है, तो हम क्यों करें इसके पर। परंतु कई बार आप लोगों ने पहली बार देखा है, इसलिए आपके मन में ये संकल्प है। हम लोग ने तो ब्रह्मा बाबा के तन में जो बाबा का आना जाना जो होता है वो हमने देखा हुआ है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं। एक बार यहाँ पर पांडव भवन में एक सन्यासी आया हुआ था और वहाँ पांडव भवन में 3-4 दिन रहा। आप सबको मालूम नहीं होगा क्योंकि ये पुरानी बातें हैं, पुरानी बातें जो है नए भाई बहनों को ये मालूम नहीं होगा। तो बाबा के पास पांडव भवन में आकर के 3-4 दिन रहा। 3-4 दिन के बाद वो सन्यासी ने कहा बाबा को, ब्रह्मा बाबा को, कि मुझे बॉम्बे जाना है, तो मुझे कोई भी सेवा केंद्र का चिट्ठी लिख कर दो तो मैं वहां जाकर के रहूंगा। तो ब्रह्मा बाबा ने यीशु दादी को बुलाया कि इस बच्चे को आप चिट्ठी लिख करके दो। ऐसा कहते हैं इतने में जो है ना ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा की प्रवेशता होगी। मैंने आपको कहा ना, आना जाना होता था, कई बार दूसरे काम के लिए जाते हैं, कई बार आते हैं, मालिक है। जैसे आपका घर, आप मकान में रहते हो, आपके हाथ में है मकान में, कई मकान में जाऊं, कभी निकलूं, कैसे जाऊं, कहां जाऊं, कितनी घंटा नींद करूं, क्या खाऊं पीऊं, ये आपका घर का आप मालिक है। उसमें कौन पूछ सकता है आपको कि इतने बजे क्यों निकलते हो, इतने घंटे क्यों आराम करते हो। इस प्रकार से ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा प्रवेश हो गए और बाबा ने सीधा ही उल्सीदाजी को कहा, नहीं नहीं नहीं, इस बच्चे को सेंटर की चिट्ठी मत देना, इस बच्चे को चिट्ठी देना रमेश के ऊपर, कि रमेश के घर में जाकर के रहे और रमेश उसका ध्यान रखेगा। और बाबा विश्व दादी ने चिट्ठी लिख करके दिया और उसके बाद वो गया। उसके बाद साका अव्यक्त बाप दादा ने कहा कि ये ब्रह्मा बाप जो है ना वो त्रिकालदर्शी नहीं है, उसके सामने तो वर्तमान की बात आती है, थोड़ी भविष्य की बात समझ सकता है, वो तो बाप त्रिकालदर्शी है। और बाप त्रिकालदर्शी है, बाप जानता था कि ये सन्यासी नहीं है, ये सन्यासी नहीं है, ये एक सरकार का गुप्त रूप में आया हुआ ऑफिसर है, गुप्त रूप में आया हुआ ऑफिसर है। इसलिए बाप ने ब्रह्मा बाप की बात को चेंज करके रमेश के घर में भेजा। क्यों? कि रमेश होशियार है, रमेश इस बात को, रमेश को सावधान कर देंगे कि ये सरकार का ऑफिसर आया हुआ है, इसके लिए उसके साथ ध्यान रख करके कारोबार करें। तो इस प्रकार से बाप के बीच बाबा के, हमने आना जाना का देखा हुआ है, आपने तो वो भी नहीं देखा हुआ होगा कि पुष्पमणि बहन जो उसके तन में 15 दिन बाबा नॉन स्टॉप आकर के रहे, और उसलिए रहे, बाबा ने इसलिए अनाउंसमेंट किया था कि मैं इसलिए इस तन में पुष्पमणि, क्योंकि पुष्पमणि दादी जो है ना वो मेंटली रिटार्डेड बहन थी, मतलब मेंटली रिटार्डेड, जानते हैं मेंटली रिटार्डेड कैसे होती है, उस प्रकार से थी। और ऐसी मेंटली रिटार्डेड बहन के तन में आकर के 15 दिन बाबा ने मुरली चलाई। तो इसलिए बताया, बाबा ने कहा कि मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये ब्रह्मा बाबा तो होशियार है, उसके द्वारा मुरली चलाती है, तो कहीं समझ नहीं सकते है कि ये कौन मुरली चलाता है कौन नहीं चलाता है। इसलिए पुष्पमणि मेंटली रिटार्डेड बहन के तन में आकर के 15 दिन बाबा ने मुरली चलाई। 15 दिन बाबा संदर पर बैठते थे, ब्रह्मा बाबा मातेश्वरी और सब नीचे बैठ करके बाबा की मुरली सुनते थे। और उसमें भी क्या हो गया, एक दिन जो है पुष्पा मणिबेन बैठी थी, दादी पुष्पा दादी ब्रिजेंद्रा और मातेश्वरी उसके बाहर के कमरे में बैठे हुए थे। इतने में पुष्पा मणिबेन को नींद, बाबा ने वो तन छोड़ करके किधर जाना पड़ा तो वो तन खाली हो गया। तो मतलब फिर भी बाबा ने पुष्पमणि दादी की आत्मा को वापस नहीं भेजा, उसको शांत रख दिया और 15-20 मिनट के बाद आए। इतने में दादी ब्रिजेंद्रा और दादी मातेश्वरी विचार करते थे ये कौन है, ये पीयू कौन होता है, कैसा होता है। तो इतने में ही बाबा प्रवेश करके पुष्पमणि तन में आ गए। पुष्पमणि बहन तन से उठ गई और मम्मा के और दादी ब्रिजेंद्रा के पास जाकर के उसके पूछा, अरे आप आए हुए परमात्मा को नहीं पहचानते हो, सोचते हो ये कौन है, ये कौन है। मैं इतना तो कह रहा हूँ, मैं रचयिता हूँ, मैं श्री बाबा हूँ, इस प्रकार का परिचय देता हूँ तो भी आपके मन में ये संकल्प चलता है। मैं आना जाना तो करता हूँ और मेरे इसलिए तो आना जाना के लिए मैंने ये तन लिया और उसके द्वारा करता हूँ। मेरा परमानेंट तन तो जो है ब्रह्मा बाबा का शरीर है, उसके तन में आना जाना करूँगा। तो इस प्रकार से आने जाने का कई बात होती है। हमने कई बार अभी तो क्या है, साकार मुरली जो है वो प्रिंटेड आती है, इसलिए उसके अंदर बीच में क्या हुआ मालूम नहीं पड़ता है। और तो कई बार हम लोग साकार मुरली सुनते थे तो कई बार लगता था कि ये बात जो है बाबा ने कही है, और सडनली बाबा को जाना पड़ता था। तो बाबा ने मुरली में भी कहा हुआ है कि ये ब्रह्मा बाप भी कोई बुद्धू नहीं है, अगर मुझे कोई जाना पड़ता है तो वो सुनता है, और मेरे जाता हूँ तो मेरे साथ सुनता रहता है वो, और उसके कारण मैं जिस लेवल पर बोलता हूँ उस लेवल पर ही बाप जो है ब्रह्मा बाप जो है उसको उठा करके मुरली को आगे चलाता है। कई बार मैं बीच में आ जाता हूँ तो मैं भी उन सुनता हूँ कि उसने ये बोला हुआ है, मैं उस बात को उठा करके उसको आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि ये आप हम दोनों का बीच का संबंध है। हमारे गुजराती में कहावत है मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। इस प्रकार से बाप दादा जो है वो दोनों का आपस का जो व्यवहार है जिस प्रकार से चलता है वो दोनों वो अपना व्यवहार को जाने, हम बच्चों को क्या है। तो इस प्रकार से अगर इस बात को समझे और इस प्रकार से कारोबार करे तो जिसके साथ हमारा संबंध है संपर्क है और उस कार्य को हम उठा लेवे तो अच्छी बात है। तो इसलिए जो कल भी बाबा ने कहा, पिछली मुरली के बारे में भी हमने सबको कहा कि ऐसे संकल्प मत उठाइए, आगे चल करके होने वाला ही है। क्योंकि एक बात तो सच्ची बात तो यही है, आप सब हम सब जानते हैं कि सतयुग में शिव बाबा नहीं आ सकेंगे। आ सकेंगे हाँ, पहले आपको ये भी मालूम नहीं होगा ना, हमारे यहाँ एक बहन ने गीत लिखा था, मेरे सतयुग में आना रे, मेरे सतयुग में आना रे, मेरे महलों में आना रे, मेरे पकवान आदि जो बने होंगे वो सब खाने के लिए आ जाना। इस प्रकार से बहुत सुंदर गीत लिखा था। तो गुलजार दादी भोग लेकर के बाबा के पास जा रही थी, गुरुवार का दिन था, उस टाइम पर दोपहर में भोग लगा था। तो गुलजार दादी जा रही थी तो हम सबने वो गीत गाया कि हमारे सतयुग में आप आना, हमारे सतयुग में आप आना, वो गीत गाया था। तो बाबा गुलजार दादी बाबा के पास गई कि बाबा आपको सबने निमंत्रण दिया है सतयुग में आने का है। तो बाबा ने जवाब में भेजा संदेश कि बाबा सतयुग में आने के लिए तैयार है, परंतु यहाँ का निमंत्रण नहीं, मुझे आप बच्चे सतयुग में निमंत्रण भेजना तो मैं आऊंगा। ऐसे सहज ताली मत बजाइए, बाबा बहुत युक्ति से जवाब देता है। तो इसलिए बाबा ने कहा सतयुग का निमंत्रण मुझे मिले तो आएंगा, तो आप सारे क्लास को पूछ लो कि सतयुग में मुझे कौन निमंत्रण देगा, हम सब में किसको सतयुग में बाबा याद होगा। ऐसे आज की दुनिया में भी ऐसा ही है, गाया हुआ है दुख में सब करे स्मरण पर सुख में करे न कोई, सुख में कोई परमात्मा को याद नहीं करेंगे। आज की दुनिया के सुख में भी परमात्मा को याद नहीं करते हैं तो सतयुग की सुख में हम कहाँ से याद करेंगे। इसलिए इतनी सहज बात नहीं है, परंतु मैं बैठा हुआ था तो मैंने बाबा को संदेश में जवाब भी दिया, बाबा मैं तैयार हूँ निमंत्रण देने के लिए। तो सबने कहा रमेश भाई आपको कैसे बाबा याद रहेगा कि बाबा को निमंत्रण भेजना। मैंने कहा आप मेरी बात तो सुनो, मैंने बाबा को कहा कि बाबा हम निमंत्रण आपको देने के लिए तैयार है, परंतु आपको निमंत्रण भेजे कैसे, निमंत्रण भेजे कैसे। क्योंकि साक्षात्कार की चाबी तो आपके हाथ में है, आप साक्षात्कार की चाबी हमको दे दो, साक्षात्कार की चाबी हमको दे दो, हम आपको सत्युग में जरूर निमंत्रण देंगे। चलो आपका हमारे में विश्वास न हो तो आपका जिस तन में आप आते हो, गुलजार दादी के तन में आते हो, उसको चाबी दे दो और वो आपके पास आकर के हम सबका निमंत्रण आपको आकर के दे देंगे। तो इस प्रकार से बाबा के साथ रूरियान करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। गुलजार दादी फिर उस दिन वापस बाबा के पास गई कि बाबा रमेश बच्चा तैयार है, साक्षात्कार की चाबी मांग रहा है। तो क्या करे, बाबा साक्षात्कार की चाबी हमको देगा? वो ये तो अपने हाथ में रखा हुआ है साक्षात्कार की चाबी। तो इस प्रकार से रूरियान करिए, बाबा के साथ मौज मजा से रहिए, खुशनुमा बन करके रहिए। बाकी ऐसी बातें जो होगी बहुत होगी, क्योंकि आगे चल करके ये हकीकत है बाबा, हर आस्ते आस्ते आज देखिए आप सबको मालूम नहीं है, अभी भी 24 तारीख की अव्यक्त मुरली थी, उसके बाद 27 तारीख की अव्यक्त मुरली रिवाइज हो गई। मई महीने के यहाँ कौन सा महीने की थी, 24 तारीख, मतलब उस दिनों में बाबा दो दिन के बाद आते थे। हमारे भाई बहनों को भी हिसाब नहीं आता है, 24 के बाद 27 आया। तो मैंने क्लास में पूछा बॉम्बे में कि कितने दिन के बाद आए, तो बाबा ने वहां पर सबने कहा 3 दिन के बाद है। मैंने कहा गलत बात है, 24 को भी आए 27 को भी आए, तो बीच में दो दिन ही नहीं थे, 25 और 26, तो दो दिन के बाद आए या 3 दिन के बाद आए, हिसाब करना भी नहीं आता है हमारे भाई बहनों को। तो इस प्रकार उस जमाने में बाबा घड़ी घड़ी आते थे, मतलब दो दो तीन तीन दिन के आते थे, और हम लोग भी बाबा को बहुत संदेश भेजते थे, बाबा इसका क्या करें, इसका क्या करें, इसका क्या करें। और उसके बाद क्या हो गया, आस्ते आस्ते हम बच्चों को बाबा तैयार करते गए, क्योंकि मैंने कई बार कहा हुआ है कि बाबा का कर्तव्य और धर्म स्थापक का कर्तव्य में जमीन आसमान का फर्क है। धर्म स्थापक धर्म स्थापन कर करके बाबा ने बताया है, तो धर्म स्थापक धर्म स्थापन कर करके उसी धर्म की पालना करने के लिए एक के जन्म जन्म बाय जन्म आकर के अपने धर्म की पालना करते हैं और अंत के सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहेंगे। इसलिए उनको और किसी का तन की जरूरत नहीं है, और किसी का कर्तव्य संभालने के लिए जरूरत नहीं है, खुद ही संभालते रहते हैं। परंतु श्री बाबा के कनेक्शन में क्या बात है कि वो अभी ज्ञान दे सकते हैं, ज्ञान देंगे हमको श्रेष्ठ बनाएंगे, और हमारे हाथों में सत्यु की दुनिया का कारोबार छोड़ करके बाबा सत्यु को त्रेता युग में मतलब ऊपर रहेंगे। मैंने बाबा को उसके ऊपर ही बाबा को हंसी हंसी में कहा था, मैंने कहा बाबा क्रिश्चियनिटी में तो ऐसा गायन है कि परमात्मा ने 6 दिन सृष्टि रची और 1 दिन आराम किया। क्रिश्चियनिटी, आप जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म को पढ़ा होगा, मैंने वो पढ़ा हुआ है इसलिए मैं कहता हूँ, उसमें तो है परमात्मा को सृष्टि रचने में 6 दिन लगे और 1 दिन आराम किया। मैंने कहा बाबा आप तो संगम युग में 100 साल जितना भी आते मैं पुरुषार्थ करो, उसके बाद 2500 वर्ष तक आराम करते हो, इतनी बड़ी लॉन्ग लीव क्यों लेते हो? मतलब इस प्रकार से आप बाबा के साथ रूरियान करो ना तो बहुत मजा आएंगी। और इस प्रकार से बाप के साथ करना है, परमात्मा समझो नहीं, परमपिता है वो बराबर है, परंतु परमपिता अभी पिता के रूप में हमारे साथ कर्तव्य कर रहा है, तो इस पिता के रूप का संबंध जो है, इस कर्तव्य जो है, उसकी मजा ले लो ना, उसके मौज करो ना, तो बातें तो बनती रहेंगी। और आके जल करके ऐसे होने वाला है कि बाबा हम बच्चों को सारी दुनिया का कारोबार हाथ में दे करके बाबा सत्यु की दुनिया में हम बच्चों को भेजेंगे। तो इस प्रकार से जो होने वाला है उसकी तैयारी के रूप में आस्ते आस्ते बाबा खुद ही निवृत्ति का पाठ बजाना शुरू करेंगे और हम बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको कहा ना दो दो दिन के बाद बाबा शुरू में आते थे और आज साल में 10 दिन ही आते हैं, ऐसा ही हो ना। अभी क्या है, 15 नवंबर को आए, 30 नवंबर को आएंगे, फिर 15 दिसंबर को आएंगे, 31 दिसंबर को आएंगे, फिर 18 जनवरी को आएंगे, इस प्रकार से 30 मार्च तक चलने वाला है कार्यक्रम। तो अभी इतना लंबे समय के बाद आते हैं और शुरू में दो दो दिन आ जाते थे और कितनी लंबी मुरली चलाते थे। जब सुखधाम का ओपनिंग किया, जो पुराने भाई बहन है उनको मालूम होगा कि जब बाबा ने सुखधाम का ओपनिंग किया तो शाम को 6:30 बजे आ गए थे, 6:30 से सुबह 9:30 तक बाबा रहे, इतना समय हम बच्चों के साथ बाबा रहे। और अभी तो तीन घंटा रहते थे पहले, बीच में तो पार्टियों से मिल करके व्यक्तियों से मिलते थे। इस प्रकार से आस्ते आस्ते आस्ते, जैसे एक जो कछुआ होता है ना, वो अपने अंग जो है खींच लेता है अंदर, अपनी इंद्रियों को खींच लेता है। इस प्रकार से बाबा आस्ते आस्ते इतना युक्ति से अपना पार्ट खींच रहा है, अपने को प्रायलोप कर रहा है कि एक दिन सचमुच सत्युग में वो प्रायलोप हो जाएंगे और हम बच्चे अकेले रह जाएंगे। इस प्रकार से बाबा का कार्य चलता है। तो बाबा के कार्य का उसी लॉजिक के रूप में, उसी तथ्य के रूप में, उसी हकीकत के रूप में, उसी वास्तविकता के रूप में स्वीकार करिए, और इस वास्तविकता को स्वीकार कर करके उस प्रकार से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ कीजिए। जैसे जानकी दादी ने पूछा ना कि अगर आप सब अपने पार्ट से संतुष्ट हो तो आप नक्की कर सकते हो कि हम सतयुग में श्रेष्ठ पद विश्व महाराजा विश्व महारानी का पद प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आए ही है ऐसा सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए, और उसके लिए जो पुरुषार्थ करना चाहिए वो करना चाहिए। बाकी फालतू बातें तो, छोटी बातें तो बहुत होती रहेंगी और होती रहेंगी, वो होने वाली ही है। उसके लिए क्या करना चाहिए? परीक्षाएं आती रहती हैं, समस्याएं आती रहेंगी। गुलजार दादी जब रशिया में थे तो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो रशिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अखबार वाले ने पूछा कि आपके सामने समस्या आती है तो आप क्या करते हो? गुलजार दादी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, हम लोगों के पास समस्या आती है तो हम समस्या को समस्या नहीं समझते हैं, हम समस्या को परीक्षा समझते हैं। और परीक्षा इसलिए समझते हैं क्योंकि होशियार जो विद्यार्थी होता है वो जानता है कि परीक्षा में हम पास हो गए, परीक्षा में पास हो गए तो हमको अगली हायर डिवीजन में हमको जाने का चांस मिलेगा। हमारा मतलब परीक्षा हमको आगे बढ़ाने के लिए आती है। उस प्रकार का लक्ष्य कौन से रखेंगे तो परीक्षा के प्रति जो डर भय ये सारा जो भी है, परीक्षा ही हाय 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 हाय, इस प्रकार इसके बदले में क्या हो जाएगा? वाह वाह हो जाएगा, वाह 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 परीक्षा वाह। इस प्रकार की ऐसी सुंदर मनोभावना हमारे मन में होनी चाहिए। ये डर जो है, भय जो है, हम बाबा कहते हैं कि आप बच्चों को निर्भय बन जाओ, निडर बन जाओ। आपको डर किस बात का? जब बाप का साथ मिला है, बाप का हाथ मिला है, तो फिर ये परीक्षा की बात पर ये डरती क्यों बात? बातें तो होने वाली ही है। और आगे चल करके बाबा ट्रेनिंग देता रहता है। लौकिक दुनिया में भी ऐसा ही होता है, ट्रेनिंग देता है। आप सबको मालूम नहीं होगा, जब हम लोग आबू का म्यूजियम बना रहे थे तो स्वर्ग का सीन बनाने का था, तो स्वर्ग के सीन के लिए हमने बाबा से पूछा कि बाबा इसमें स्वर्ग का कौन सा सीन दिखावे। तो अव्यक्त बाबदा से जो पूछा था, क्योंकि बाबा तब तक तो मकान लेने की बात हो गई थी, इतने में बाबा अव्यक्त हो गए थे और इसके बाद म्यूजियम बनाने का नक्की था, बाबा ने बताया था। तो हमने बाबा को पूछा स्वर्ग के बारे में क्या दिखावे, तो बाबा ने बहुत सुंदर एक बात कही, ट्रांसफर ऑफ पावर। सत्य की दुनिया में लक्ष्मी नारायण वन, पहला नंबर का लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण टू, उसके गद्दी का वारिस क्यों कैसे ट्रांसफर करते हैं पावर लक्ष्मी नारायण। ऐसा आज की दुनिया में क्या होता है, इंग्लैंड की रानी सरी छोड़ती है ना, उसके बाद उसका बेटा या उसके जो भी वारिस होगा वो राजा बनेगा। आज की दुनिया में तो ऐसा होता है, हुमायूं मर गया उसके बाद उसका बेटा अकबर राजा बना, अकबर राजा मर गए उसके बाद उसका बेटा मरना, मरने के बाद नया राजा गद्दी पर आता है। बाबा ने बताया सतयुग में ऐसा नहीं होगा, सतयुग में राजा जो है, विश्व महाराजा जो है, वो खुद ही अपने जीते जी अपने बेटे को राज सिंहासन पर बैठा करके उसको राज तिलक खुद ही ट्रांसफर ऑफ पावर इतना स्मूथली होगा। इसलिए स्मूथली होगा कि उसके बाद खुद ही बैठ करके अपने बेटे को गादी राजगादी कैसे चलानी चाहिए, समाज अपने कारोबार कैसे करना चाहिए वो सिखाते हैं और सिखा करके उसको तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से ट्रांसफर ऑफ पावर का बाबा ने बताया कि आप बताओ। तो उस दृष्टिकोण से जब आप अबू का म्यूजियम देखने के लिए जाओ, तब ये देखना कि कितना स्मूथली बाबा के सतयुग की दुनिया के अंदर ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम फर्स्ट लक्ष्मी नारायण टू सेकंड लक्ष्मी नारायण, सेकंड लक्ष्मी नारायण टू थर्ड लक्ष्मी नारायण कैसे सुंदर होगा। ये बाबा की जो बातें जो है उसको उसी रूप में समझेंगे ना, तो आपको बहुत आनंद आएगा। ये देखो बाबा सारी सतयुगी दुनिया का नजारा जो है, कैसे उसकी स्थापना होगी, कैसे उसका कारोबार होगा, कैसे उसकी व्यवस्था होगी, इस बात को समझने का कोशिश करो। ऐसा कोशिश करेंगे ना तो बहुत खुशी होगी। और इसलिए बाबा ने जो कहा ना खुशनुमा, तो ये खुशी तब आएगी जब बाप को बाप के रूप में और बाप के कर्तव्यों को उसी कर्तव्यों के रूप में हम समझेंगे तब। नहीं तो क्या हो जाएंगे, हम सोचते रहेंगे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्यों क्यों, क्या 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 बाबा ने कहा उसको छोड़ दो। क्यों, बाप का काम है, बाप को जैसे करना चाहिए उसे करने दो। हम उसके साथ भक्ति में भी गीत है, जिस रंग में परमात्मा राखे उसी रंग में रहियो जी, इस प्रकार का भक्ति मार्ग में भी एक भजन है, जिस रंग में परमात्मा राखे। परमात्मा जिस रंग से, जिस तरीके से, जिस व्यवस्था के आधार पर नई सृष्टि की स्थापना करते हैं उसी तरीके से रहिए ना। उसमें क्यों करे, क्या करे, कैसे करे, क्यों ऐसा किया, इस प्रकार के संकल्प विकल्प करने से क्या होगा, हमारा ही समय बर्बाद होगा। और इसके बदले में जो बनाते हैं जिस रंग में परमात्मा राखे, जिस तरीके से राखे, जिस तरीके से हमारे साथ में व्यवहार करे और जिस तरीके से हमको ज्ञान देते हैं उस प्रकार से करिए, बहुत सुंदर हो सकता है जीवन, बहुत सुंदर हो सकता है। बाबा ने जो आज की मुरली में जो कल कहा खुशनुमा जो है, खुशनुमा जीवन हमारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। बाबा ने तो कहा अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीवी मरे तो हलवा खाओ, हकीकत है। हम लोगों को अनुभव कराया है, हमने अपने जीवन में ही देखा, हमारे लौकिक माता ने शरीर छोड़ा, हमारे लौकिक युगल ने शरीर छोड़ा, लौकिक बहन ने शरीर छोड़ा, सबका छोड़ा, सबके अंदर से आ गया। बाबा ने उसी टाइम पर कहा था कि बस आप शांति से रहो, 3 मिनट बाबा को याद करेंगे। फिर ओम शांति। पीछे बाबा ने हम स्टेज का कारोबार शुरू हुआ, दादी जानकी ने हम सबकी ओर से बाबा को निमंत्रण दिया कि बाबा को आपको आते ही रहने का है। और फिर निर्मल भाई ने हम सबकी ओर से पूछ लिया कि बाबा आपका जो प्रिंटेड सब जगह पर गया हुआ कार्यक्रम जो है, आप जानते हैं कार्यक्रम 15 नवंबर, 30 नवंबर, 15 दिसंबर, 31 दिसंबर, इस प्रकार का कारोबार जो है वो कारोबार में परिवर्तन करना है या कैसे करना है या उसको चलते रहना देना है। तो बाबा ने कहा वो चलता ही रहेगा। अर्थात बाबा ने इस प्रकार से कह करके ये बात कन्फर्म किया कि बाबा का कल का जो प्रोग्राम जो था वो तो शरीर के लिए टेम्पररी था, बाकी तो बाबा का रेगुलर प्रोग्राम जो है वो खुशखबरी के रूप में आपको उसके ऊपर ताली बजानी चाहिए कि 30 नवंबर, 15 दिसंबर आदि आदि के जो 31 मार्च तक का जो कार्यक्रम आप सबके पास मधुबन से आया हुआ है वो चलता रहने वाला है। तो इसलिए ये तो टेम्पररी फेज था कल की बात का। तो इस प्रकार से बाबा ने वो भी कर दिया और जवाब दे दिया कि इस प्रकार से वो चलता रहे, नहीं तो बाबा को हम पूछते थे बाबा को उसमें परिवर्तन करना होता तो कहता कि उसमें परिवर्तन करो, पर बाबा ने परिवर्तन करने के लिए कुछ भी नहीं कहा, कहा वो तो चलता रहेगा जैसे है प्रोग्राम ऐसा ही चलेगा प्रोग्राम, इस प्रकार से होगा। मैं अपना एक अनुभव बताऊं, मैंने भी बाबा को हमारी तबीयत के बारे में सवाल पूछा था, एक नई थेरापी निकली है किडनी के बारे में, हमको कम किडनी की बीमारी है, तो बाबा से हमने पूछवाया था कि हम किडनी के बारे में ये ट्रीटमेंट लेवे या नहीं लेवे। और हमने दूसरा सवाल पूछा था कि वो ट्रीटमेंट के लिए बॉम्बे के डॉक्टर से पूछे या पुणे के डॉक्टर से करावे। तो स्टेज पर बाबा रतम दादी ने कहा कि आपका वो प्रश्न जो है आप बाबा से पूछ लो। मैंने मुन्नी बहन से भी कहा मैं पूछ लो क्योंकि डिसिप्लिन तो होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा पूछ लो। तो हमने बाबा से पूछा, बाबा ने तो याद लीनू बहन ने कहा आपको याद बाबा को याद कराओ किस बात का प्रश्न आपने पूछा था। मैंने बाबा को कहा बाबा हमने आपको वो जो थेरापी जो है किडनी के बारे में उसके लिए कहा था। बाबा ने कहा हाँ, बाबा ने बाबा को संदेश मिला है, बाबा ने कहा कि 2-4 डॉक्टरों का ओपिनियन ले लो और फिर बॉम्बे के डॉक्टर से ही करना है, पुणे वाला से नहीं पड़ता, बॉम्बे से डॉक्टर से ही करना है और बाबा की छुट्टी है। तब मुझे ख्याल आया कि हमारी गुलजार दादी कितना माइन्यूटली और ऑनेस्टली और सिंसियरली जो भी हम बाबा से पूछते हैं वो बाबा को वर्बेटिम वहां जाकर के पूछती है। हमने 2 सवाल पूछा कि हम ये ट्रीटमेंट करावे या नहीं, और अगर दूसरा कराना है तो कहाँ के डॉक्टर से, बॉम्बे के डॉक्टर से या पुणे के डॉक्टर से। वो बाबा ने बाबा को इन्होंने वो पूछ लिया कितना ऑनेस्टली। हम लोग जो है संदेश कोई हमको देता है हम कितना याद करते हैं, कितना कहते हैं, कुछ भी नहीं कहते, भूल भी जाते हैं, संदेश संदेश के रूप में नहीं कहते हैं। पर गुलजार दादी ने वर्बेटिम बाबा को संदेश जा करके, क्योंकि मैंने लिखत में दिया था तो बाबा ने भी उसका लिखत में जवाब दे दिया, उसका बुरा ही जवाब दे दिया। तो इस प्रकार से बाबा अपना कर्तव्य करके गए। कल बाबा ने भोग भी स्वीकार किया, हम 3 भाइयों को भी और द्वारों को भी हम बाबा ने उनके मुख से हाथ से भी भोग स्वीकार किया, उनको भी टोली दिया, इस प्रकार से सब कारोबार किया, याद प्यार दिया, विदेश के बहन भाइयों को भी बाबा ने याद किया। हम सोचते हैं कि विदेश के बहन भाई देखते होंगे, हम ऐसा बोल सकते, हम 100% नहीं बोल सकते कि वो देख रहे हैं। और बाबा के सामने तो त्रिकालदर्शी बाप है, त्रिकालदर्शी बाप के सामने 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक वर्तमान में सारी दुनिया के अंदर जो भी है वो भी होते हैं, और दूसरा जैसे ब्रह्मा बाबा मुरली में एक बार कहा था कि मेरे सामने वर्तमान के जो बच्चे हैं वो और भविष्य में बच्चे में आने वाले हैं, उन सबको ध्यान में रख करके मैं मुरली चलाता हूँ। उस टाइम पर हमको ख्याल में नहीं आया कि भविष्य के बच्चों को ख्याल में ध्यान में रख करके मुरली चलाता है, अब मालूम पड़ा कि बाबा की मुरलियां रिवाइज मुरली में होने वाली थी बात, और रिवाइज मुरली के अंदर जो नए नए बच्चे आने वाले हैं उसको ध्यान में रख करके बाबा ने उस टाइम पर बाबा ने उस प्रकार से मुरली चलाई। कितना बाबा का सुंदर गहरा वास्तविक प्लानिंग है, हम इतना प्लानिंग कहाँ कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा का प्लानिंग, परमात्मा के ये सारी बातें सीखो और उसके आधार पर हम भी अपने जीवन का प्लानिंग का कारोबार करें। दूसरी 2 बातें मुझे करनी थी पिछले मुरली के हिसाब से, मैंने पिछले टाइम पर भी कहा था, परंतु आप कहीं आप में से यहाँ बैठे हुए पिछले टाइम नहीं थे, तो इसलिए मैंने पिछली टाइम बाबा की बात एक समझी। बाबा ने पिछली टाइम देश और विदेश की सेवा के बारे में कहा, विदेश की सेवा भी अच्छी है, भारत की भी कम नहीं है। इस प्रकार से 6 बार बाबा ने देश और विदेश की सेवा के बीच में समानता रखी, इक्वालिटी रखी, और लास्ट में कह दिया कि विदेश के बच्चों के कारण बाप का एक टाइटल सिद्ध हो गया कि बाप भी विश्व पिता है। आपको याद होगा बाबा के महावाक्य, विश्व पिता है, वो लास्ट में कहा। पर तब तक 6 बार जो है बाबा ने वही बात रिपीट किया, तो मेरे को मन में संकल्प चला कि 6-6 बार बाबा वही रिपीट करता है तो कुछ लक्ष्य होगा। 1 बार कहते हैं तो भी चल जाएगा, 2 बार कहे तो भी चलेगा, 6 बार इस प्रकार से बैलेंस रख करके कारोबार कैसे किया, क्यों किया, तो इसके आधार पर हमने बाबा के सहयोग में रोहरियान करते हुए मालूम ख्याल आया कि बाबा जो है ना इस प्रकार की इक्वालिटी, समानता समाज में लाने का प्रयत्न करने का सिखाते हैं कि समानता होनी चाहिए। जब तक समानता नहीं है तब तक ईर्षा द्वेष आदि प्रॉब्लम हो जाएगा। दशरथ राजा के जमाने में देखिए, राम को राज्य गादी का वारिस बनाने का सोचा तो कई कई को ईर्षा होगी, मालूम है ना, सबने रामायण तो पढ़ा होगा, और कई कई ने उसने अपना वरदान मांग लिया कि राम को 14 साल वनवास में भेजो और मेरे बेटे को समान गद्दी, हमारे बेटे को गद्दी दे दो। आपने तो रामायण पढ़ा नहीं है बराबर। दशरथ के जमाने में ऐसा हुआ, राम को और भरत के बीच में ऐसा, इसलिए राम को वनवास में जाना पड़ा। उसके बाद राम के बाद राम राज्य में कैसे हुआ, उसके आगे का आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है, मैं आपको बताऊं। उसके बाद लव और कुश, उनके 2 बच्चे थे, तो लव और कुश में ऐसा नहीं किया कि लव बड़ा था इसलिए, सॉरी कुश बड़ा था इसलिए कुश को राजा बनाया, ऐसा नहीं। राम ने दोनों बेटे को बीच में समान हक में, इक्वालिटी के हक में बना करके लव और कुश का राज्य अलग करके दिया, और उसके कारण क्या हो गया कि प्रेम प्यासे आपस में चलते रहे। ये बात सीखने की है कि समानता के आधार पर समाज का उत्कर्ष कैसे हो। आज के जमाने में वो समानता नहीं रही है हर जगह पर। अगर माताएं यहाँ बैठी हुई, अगर सास कहीं होगी, हमारा उनसे निवेदन है कि हर सास अगर अपने घर में बेटी और बहू के बीच में समानता रखे, बेटी और बहू के बीच में समानता रखे, तो बेटी और बहू के बीच में झगड़ा नहीं होगा, और सास भी जो है हम प्रेम प्यार से सबके साथ व्यवहार करे। पर नहीं होता है, ये भूल जाती है कि वो सास भी कभी एक बार बहू थी, एक बार कन्या थी। 4 स्टेजेस होते हैं बहनों के जीवन में, कन्या, फिर पत्नी, फिर माता और फिर सास। जिस प्रकार से जो पोजीशन मिलती है उस प्रकार के, उसके साथ साथ उस नए प्रकार की जिम्मेदारी के साथ साथ अपने जीवन का व्यवहार का परिवर्तन करें तो घर में सुख शांति आनंद प्रेम सब कुछ हो सकता है। समय के साथ साथ अपने आप को बदलना चाहिए, ये करुण वास्तविकता है, और वो हम नहीं करते तब क्या होता है, संघर्ष होता है। तो ये समानता की बात है। आज हमने कल इसलिए यहाँ पर हमारे ईश्वरिया भाई बैठे हुए हैं और सुदेश बहन है, और हम लोगों ने रिकॉर्ड भी किया इंटरव्यू 4 एपिसोड का। ये समानता होनी चाहिए, नारी जीवन के बीच में समानता होनी चाहिए, नारी को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे ही समाज के पिछड़े हुए वर्ग जो है BC और OBC आदि जो भी आप जानते हैं, उनके साथ भी समानता होनी चाहिए, इस प्रकार का कारोबार होना चाहिए। तो बाबा ने क्या किया, बाबा ने नारियों को इसलिए तो आगे रखा, नहीं तो 36-37 के अंदर बहनों की क्या परिस्थिति थी, आपको मालूम नहीं है ना उस जमाने में क्या था, क्योंकि आप, हमने तो कानून पढ़ा हुआ है, कानून के अंदर 3 प्रकार के जजमेंट जो है यज्ञ के अंदर, यज्ञ के कारोबार के आधार पर नारी जीवन को श्रेष्ठ बनाने का कारोबार हुआ है, आपको मालूम भी नहीं होगा। पहला कारोबार तो ये हुआ कि स्त्री अपना स्त्री धन की मालिक हो सकती है या नहीं। हमारी भोली दादी जो थी, आपको मालूम होगा किचन के अंदर पहले भोली दादी इंचार्ज थी, भोली दादी अपनी बेटी मीरा, अभी भी मीरा ऊपर रहती है, तो भोली दादी मीरा को लेकर के और अपने माँ बाप से जो धन मिला हुआ था वो लेकर के आई थी। तो उसके बाद उसके पति ने उनके ऊपर केस किया, कि तुम गई हो तो ठीक है, चले जाओ, भले बेटी को लेकर के गई बहुत अच्छा है, हम दूसरी शादी करेंगे, और बेटी होगी तो दूसरी कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा, परंतु तेरे पास जो ज्वेलरी है जो तेरे बाप से तुमको मिली थी, तुम लेके गई हो, वो हमारी है। स्त्री को अपना धन रखने की स्वतंत्रता नहीं है, ऐसा मान करके उसने उसके ऊपर, भोली दादी के ऊपर केस किया। और कराची हाईकोर्ट, उस जमाने में कराची जो है वेस्टर्न इंडिया, बॉम्बे स्टेट जो था उसमें महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध और बलूचिस्तान आता था, उसके लिए कराची हाईकोर्ट भी बॉम्बे हाईकोर्ट थी। तो इन्होंने उसके अंदर जजमेंट दे दिया कि स्त्री को अपना स्त्री धन रखने का अधिकार है, उसके माँ बाप से मिली हुई संपत्ति वो स्त्री की होती है, उसके ऊपर पति का हक नहीं हो सकता है। बहुत क्लासिक जजमेंट है, और इसके आधार पर स्त्री अपने धन का मालिक बन सकती है, वो सिद्ध हो सका। और आज तो बहुत जजमेंट आ गए, परंतु तो वो पहला जजमेंट 36-37 की कहानी का है। दूसरा जजमेंट जो आया कॉन्जुगल राइट्स का, ये हमारे दादी प्रकाशमणि जो उनकी बड़ी बहन थी, उसके पति ने उनके ऊपर केस किया कि तुम्हारी पत्नी है, मैं मेरे को विकार की इच्छा होगी तो मेरे विकार की इच्छा के लिए उनको मेरी विकार के लिए अपना शरीर मुझे देना ही चाहिए। उस प्रकार का उसने वकील के कोर्ट में केस किया, कंजुगल राइट्स, पति का हक पत्नी के ऊपर। आज तो बहुत बातें बहुत हो गई, सरकार ने कानून भी बदली कर दिया कि पत्नी की इच्छा विरुद्ध अगर पति उनके साथ विकार के फोर्स करता है तो उसको बलात्कार, रेप कर सकते हैं, उस प्रकार का आ गया है। उस जमाने में वो नहीं था, उस जमाने में भी कराची हाईकोर्ट ने कहा कि स्त्री अपना शरीर के मालिक है और उसको अपने शरीर के हिसाब से व्यवहार करने का अधिकार है, पति उसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकता है। और तीसरा जजमेंट जो है, कईयों ने कह दिया कि ये घर बार छोड़ करके जाती है, घर बार छोड़ करके जाएंगे, बच्चे को कौन संभालेगा, घर कौन संभालेगा, इस प्रकार से वो घर बार छोड़ करके नहीं जा सकती है। तो तीसरा जजमेंट है कराची हाईकोर्ट ने दिया कि स्त्री भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए घर बार छोड़ सकती है। आप बहनों को खुश होनी चाहिए बात की, ये 36-37 में इस प्रकार से नारी जीवन का जो ये फंडामेंटल राइट्स जो है उसको कोर्ट के द्वारा, जिसके बारे में ब्रह्मा बाबा ने और हमारे दैवी परिवार ने मेहनत किया, वो रिकग्नाइज हुआ कि नारी, अगर पुरुष जो है अपने घर बार छोड़ सकता है और घर बार छोड़ करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए सन्यासी बन सकता है, घर बार छोड़ करके बनारस जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, कैसे कैसे कारोबार करेगा, तो स्त्री को भी इतना ही अधिकार है, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए घर बार छोड़ सकती है, और घर बार छोड़े तो उसके ऊपर कानून उसको फोर्स नहीं कर सकता है कि तुम जाकर के घर बार संभालो। कितनी सुंदर बातें बाबा के जीवन में, मतलब संस्था के स्वरूप के जीवन के अंदर ये बातें हुई। तो इस प्रकार से ये समानता का कारोबार जो है हमारी, आज भी हमने सुना कि महिला विंग की आज मीटिंग है, तो महिला विंग की मीटिंग के अंदर हमारा उनसे अनुरोध है कि महिला विंग के अंदर नारी के जीवन में समानता होनी चाहिए, एक बाप अपने दो बेटों के बीच में समानता रखे, ये नहीं होता है। मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, कानून के अंदर बात आ गई है कि कोई भी माता पिता शरीर छोड़ता है और उसके बाद उन्होंने विल नहीं बनाया होगा तो उनकी संपत्ति उसका बेटे और बेटी के बीच में समानता, समान हिस्से में विभाजन होगा, परंतु उसमें एक बात लिखी हुई है, परंतु अगर माँ बाप ने अपना विल बनाया होगा तो विल के मुताबिक माँ बाप की संपत्ति और उनके वारिसों के बीच में, बेटे और बेटी के बीच में विभाजन होगा। मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ इनकम टैक्स की, चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में, मैंने 3,000 से भी ज्यादा बहन माँ बाप का विल बनाया हुआ है। 3,000 माँ बाप में से एक भी माँ बाप मेरे अनुभव में नहीं आए जिन्होंने अपनी संपत्ति अपने शरीर छोड़ने के बाद समान हिस्से में बेटे और बेटी के बीच में बांटा होगा। कानून आगे बढ़ गया और तो समाज पीछे रह गया, कानून ने कह दिया बेटा और बेटी के बीच में भेद नहीं रखो, परंतु माँ बाप ने क्या किया, हमने 3,000 बिल में माँ बापों ने यही लिखवाया कि हमारी बेटी की शादी में उसको जो भी देना था हमने दे दिया, अब उसको हमारी संपत्ति में से कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा 3000 मतलब माँ भी अपनी बेटी को समान हिस्से में नहीं देती है, माँ बाप दोनों ही बच्चों को आगे रखते हैं बेटी को। इस प्रकार से ये समानता का कारोबार जो है, समानता के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल रिवोल्यूशन करना चाहिए, वो बाबा ने पिछली मुरली में समानता के आधार पर, देखो बाबा ने देश और विदेश के बीच में समानता को कैसे धारण कराया। इस प्रकार से हम सब भी इस प्रकार का समानता का कारोबार करें तो समाज में सुख शांति आ सकती है, सत्युग में वो डिस्टिंक्शन नहीं होगा। तो इस प्रकार से समानता का कारोबार करने का बाबा ने पिछली मुरली में सुनाया, और उसी प्रकार से बाबा ने लास्ट में कह दिया, दो बार शब्द यूज किया, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, सबने बराबर सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा बाबा की मुरली में, तो भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, तो वो कौन सा भ्रष्टाचार की बाबा ने बात की होंगी। अभी तक की मुरली में यही बात आती थी, श्रेष्ठाचार और भ्रष्टाचार, श्रेष्ठाचार सत्युग में होगा, कलयुग में भ्रष्टाचार होगा। वो इस प्रकार से बाबा ने सत्युग की और दुनिया की कंपैरिजन के रूप में कलयुग की दुनिया का भ्रष्टाचार कहा, परंतु लास्ट मुरली में सत्युग के सत्युग का श्रेष्ठाचार को याद करके भ्रष्टाचार नहीं कहा, परंतु इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप में भ्रष्टाचार कहा। तो इनसे उसके पर से भी विचार करना चाहिए कि बाबा ने जो क्या कहा, बाबा इशारा करते हैं और बाप का इशारा समझना और समझने की जरूरत है। वो गीत है ना, आप लोगों ने सिनेमा का गीत सुना होगा, समझने वाले समझ गए और ना समझे वो मालूम होगा ना, सिनेमा का गीत है। मैं आगे का नहीं बोलता हूँ, सबको मालूम होगा, नहीं होगा तो पीछे हमसे पूछ लेना, मैं व्यक्तिगत समझा दूंगा आगे क्या कहा है। समझने वाले समझ गए, ना समझे वो क्या है, वो उसमें लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से बाबा इशारा देते हैं और हम बच्चों को इशारों को समझ करके कार्य करना चाहिए। तो भ्रष्टाचार की जो बाबा ने बात कही वो बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि आज की दुनिया में कितने भ्रष्टाचार होते हैं, और इसमें भी ये यूपीए गवर्नमेंट का जो सेकंड टर्म है उसके अंदर कितना भ्रष्टाचार हुआ। हमने पुणे में मैं अभी गया था तो मैंने वहां 700 बहन भाई सामने बैठे थे, 700 बहनों को हमने पूछा, बहन भाइयों को पूछा कि यहाँ कोई ऐसा बैठा है जिसने भ्रष्टाचार का अनुभव नहीं किया हुआ। भ्रष्टाचार किया नहीं किया वो अलग बात है, भ्रष्टाचार का अनुभव, रेलवे की टिकट लेने के लिए जाते हैं, राशन कार्ड लेने को जाते हैं, ऐसे जो भी छोटी छोटी बात करते हैं कराते हैं करना पड़ता है, उसके अंदर भ्रष्टाचार के द्वारा ही काम होता है। तो इस प्रकार से आज की दुनिया में भ्रष्टाचार सर्वव्यापी हो गया है, तो ये भी हम सब जानते हैं। मैंने सबको पूछा होने में कि सत्युग में भ्रष्टाचार होगा, मैं आप सबसे पूछता हूँ सत्युग में भ्रष्टाचार होगा नहीं होगा। तो आज की दुनिया में जो भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार को भी ऐसा खत्म करे, ऐसा खत्म करे कि यह सत्युग त्रेता का एक कलयुग में ही भ्रष्टाचार है, सत्युग में नहीं आवे। तो ये भ्रष्टाचार को भी दूर करने के लिए, जैसे हमने हमारे बॉम्बे में ड्रामा एक चलता है कराते हैं, 50 बार अभी राखी के दिनों में हुआ, व्यसन मुक्ति, व्यसन के मुक्ति का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि ये सब व्यसन जुआ खेलने का, सिगरेट पीने का आदि आदि जो भी है व्यसन, सत्युग में नहीं होगा। तो जैसे व्यसन मुक्ति का कार्यक्रम करते हैं ऐसा भ्रष्टाचार के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। तो कईयों ने हमको पूछा भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है, क्या रुष्वत लेना देना वही भ्रष्टाचार है। हमने कहा कि बाबा की बात को समझो, बाबा की बात को, बाबा किसको भ्रष्टाचार कहता है, विकारों के आधार पर हुए कोई भी कर्म होगा वो भ्रष्टाचार है। इतनी व्यापक डेफिनेशन आप समझ लो, विकारों के आधार पर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वो कोई भी होगा, इसके आधार पर काम का जो भी कर्तव्य होता है वो भ्रष्टाचार है। दादी जानकी का मुझे याद है, दादी जानकी ने एक बार क्लास में कहा था, बहुत सुंदर बात कही थी दादी जानकी जो है ना, बहुत सुंदर प्रवचन करती है और बहुत सीखने को मिलता है। तो दादी जानकी ने कहा, दादी जानकी के पास एक फरियाद आई, एक भाई ने क्रोध किया दूसरे भाई के ऊपर, एक भाई ने दूसरे भाई के ऊपर क्रोध किया। तो दादी जानकी ने उनसे पूछा, तुमने क्रोध क्यों किया? तो भाई ने जवाब दिया, क्या करूं, उसने झूठ बोला, उसने झूठ बोला, इसने मुझे सहन नहीं हुआ, मैंने उसके ऊपर क्रोध किया। दादी जानकी ने उसको समझाया कि उसने झूठ बोला, उसका विकर्म हुआ, पर उसके झूठ बोलने के कारण तुमको उसके ऊपर क्रोध करने का क्या लाइसेंस मिल जाता है? क्या मिल जाएगा क्या? दादी जानकी का प्रश्न आपने समझ लिया? उसने झूठ बोला, उसके झूठ बोलने के कारण तुमको अपने हाथ में कानून, नोबडी कैन टेक लॉ इन हिज ओन हैंड्स, ऐसा मालूम है कानून की दुनिया में। इस प्रकार से बाबा ने दादी दादी ने कहा, उसने क्रोध की, उसने झूठ बोला तो तुमको क्रोध करने का लाइसेंस मिल गया, या तुमने क्रोध किया उसका तुम्हारा विकर्म बना, क्या होगा? तो भाई ने रियलाइज किया कि दादाजी हमारा भी हमने क्रोध किया तो विकर्म बना, तो हम अपनी संभाले ना, उसने क्रोध किया और उसने झूठ बोला तो उसका वो जिम्मेदार होगा, हम क्रोध कर करके हम अपना नया हिसाब किताब, नया हिसाब किताब के द्वारा नया खाता क्यों खोले? तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार की दुनिया की भी बातें ऐसे ही है, जो भी काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार। दादी जानकी ने अभी एक बात बहुत अच्छी कही, जो सरेंडर और समर्पण, सरेंडर बच्चे कौन है, समर्पित बच्चे कौन है? जब तक दादी जी ने वो क्लास नहीं कराया तब तक मैं सरेंडर और समर्पित एक ही समझता था। जैसे दादी जानकी ने ही क्लास कराया पीस और साइलेंस में क्या फर्क है, तब तक मैं समझता था पीस और साइलेंस एक ही है, क्योंकि दोनों का हिंदी ट्रांसलेशन शांति होता है, साइलेंस में भी शांति, पीस में भी शांति, परंतु दादी जानकी ने पीस किसको कहे, शांति किसको कहे, उस प्रकार से साइलेंस किसको कहे उसको बताया। इस प्रकार से सरेंडर और समर्पित के बीच में डिस्टिंक्शन बताया कि हम सब समर्पित है पर समर्पित, हम सब सरेंडर है परंतु हम सब समर्पित नहीं है। जब तक हमने हमारे खुद के संस्कार जो है उस संस्कारों को भी बाकी सब बातों का समर्पित सरेंडर कर दिया पर तो हमारे संस्कारों को हमने समर्पित नहीं किया हुआ है। और इसलिए दादी ने कहा, जब तक आपने अपने संस्कारों को समर्पित नहीं किया है तब तक आपका समर्पण संपूर्ण नहीं हुआ, और जब तक समर्पण संपूर्ण नहीं हुआ है तब तक आप संपूर्ण नहीं बन सकेंगे, और जब तक आप संपूर्ण नहीं बन सकेंगे तब तक संपूर्ण दुनिया के अंदर विश्व महाराजा विश्व महारानी नहीं बन सकते हैं। तो देखिए हमारे जो भी संस्कार जो है जिसको हमने अपने पास रखा हुआ है, हमारा ये संस्कार, हमारा ये है, हमारा ये है, इस प्रकार से हमारा 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 करते रहते, मेरा या हमारा करते रहते तो क्या फायदा? तो इसके कारण जब तक हमने हमारे संस्कारों को बाबा के आगे समर्पित नहीं किया हुआ है तब तक हमारा समर्पण संपूर्ण नहीं हुआ। और जब तक संपूर्ण हमने 77 में अपनी कॉन्फ्रेंस हुई थी, डिविनेस द मैन कॉन्फ्रेंस बॉम्बे में, उसके अंदर यही हमने लिखा था कि समर्पणता के द्वारा संपूर्णता का पेपर लिखा था, बहुत अच्छा लोगों ने अप्रिशिएट किया था। तो हम सब भी यहाँ आए हुए तो किस बात के लिए आए? संपूर्ण बनने के लिए आए हैं। संपूर्ण बनने के लिए हम सब अपने जीवन का समर्पण करने के लिए आए हैं। तो क्यों नहीं हम अपने संस्कारों का भी समर्पित कर दे बाबा को? बाबा ये क्रोध ये मोह ये अहंकार नाम, दादी ने बहुत अच्छे उसमें कहा कि संपूर्ण बनने में हमारे तीन बातें हमको हैरान करती है, नाम मान और शान, नाम मान और शान, नाम मान और शान के कारण उसी की परीक्षाओं में बहुत करके सभी फेल हो जाते हैं, और नाम नहीं आया मान नहीं मिला, इस प्रकार से कारोबार हो जाता है। तो इस प्रकार से जब तक हम हमारे संस्कारों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त करेंगे तो इस प्रकार का, इसको हम भ्रष्टाचार कहते हैं कि विकारों के द्वारा जो कार्य हुआ, चाहे क्रोध का हुआ क्या लोभ का हुआ क्या, चाहे इसलिए जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, या तन मन धन, तो तन का भी भ्रष्टाचार मन का भी भ्रष्टाचार, क्योंकि गीता में कहा हुआ है मन एवं मनुष्याणाम कारण मोक्ष बंधन। तो इस प्रकार से मन का बुद्धि का और मन जो है उसके आधार पर हमारा कारोबार होता है, तो इसलिए मन को भी उसके द्वारा भी जो भ्रष्टाचार होता है, मन में भी जो संकल्प आता है, हम भले बोले नहीं पर तो मन में भी संकल्प आया वो संकल्प पर नहीं आना चाहिए, इस प्रकार के इतने तक उसका समर्पण करना चाहिए। और धन, तन मन धन, तो धन के अंदर दुनिया, आज की दुनिया के अंदर का भी समर्पण समारंभ का बात इस प्रकार से आ सकती है। तो इस प्रकार से बहुत कुछ बातें हैं। तो इसलिए भ्रष्टाचार का भी दूर करने का एक आंदोलन हमको करना चाहिए। तो हमारी पिछले 12 तारीख को यज्ञ की मीटिंग थी, तो मीटिंग के अंदर हमने ये बात निकाली कि अभी जैसे बाकी सब प्रकार के अभियान निकालते हैं, तो क्यों नहीं बाबा ने जो 24 अक्टूबर की मुरली में अभियान बताया, मतलब ये बताया भ्रष्टाचार के बारे में, तो भ्रष्टाचार दूर करने का अभियान क्यों नहीं हम करें। दुनिया वाले तो धन का जैसे और भी कई करते हैं, जो है ना यहाँ पर हमारे पास आए थे अन्ना साहेब, हजारे आए थे, वो धन का जो भ्रष्टाचार होता है उसके लिए करते हैं। हम कहते हैं हमारा तो भ्रष्टाचार की डेफिनेशन इतनी व्यापक है। हाँ, तो इसलिए सब प्रकार के विकारों के द्वारा किए हुए कर्मों के उसी प्रकार के भ्रष्टाचारों से अगर हम मुक्त करें और मुक्त रहे तो क्या हो जाएगा, नए विकर्म हमसे नहीं होंगे। और सबके साथ प्रेम, आनंद, प्रेम शक्ति आदि जो भी है, ऐसे दिव्य गुणों के आधार पर क्यों नहीं हम व्यवहार करें, उसको भी सीखना पड़ेगा। और सीखते सीखते ही उस प्रकार के विकर्म अपने इस प्रकार का जीवन श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार का आंदोलन करना चाहिए। तो हमारी मीटिंग में सबने कहा कौन करेगा, कौन ये भ्रष्टाचार विरोध का कारोबार उसका अभियान शुरू करे। तो मैंने हंसी में कहा कि हमारी पहली सेवा की मीटिंग हुई थी बहुत साल पहले ब्रह्मा बाबा के समय में, वहां पर ऊपर जहाँ निर्वीर भाई रहते हैं, ऊपर में रहते हैं, उसके उस रूम में मुख्य भाई बहनों की मीटिंग, सेवा की प्लानिंग। अभी तो सेवा की प्लानिंग की मीटिंग में 1600-1800 बहन भाई आ जाते हैं, उस टाइम पर थोड़े ही थे। और ब्रह्मा बाबा ने आकर के हमारी मीटिंग का उद्घाटन किया और बाबा ने आकर के कहा कि मैं आज चूहों की मीटिंग में आया हूँ। आज क्या करने लिए आया हूँ, मैं चूहों की मीटिंग में आकर के उद्घाटन करने के लिए आया हूँ। तो हम सबने ऑब्जेक्शन दिया, बाबा हम कोई चूहे नहीं है, हम कोई चूहे नहीं है, आप ऐसा कहते हो कि मैं चूहे की मीटिंग में आया हूँ। तो बाबा ने कहा कि मैं अभी भी कहता हूँ आप सब चूहे हैं, क्योंकि चूहे ही मीटिंग करते हैं और चूहे मीटिंग में नक्की करते हैं कि बिल्ली के गले में घंट बांधना चाहिए। बिल्ली के गले में घंट बांधना चाहिए, परंतु वो कोई नक्की नहीं करता कि बिल्ली के गले में कौन घंट बांधेगा। वो नक्की होता है, वो कहानी आप सबने सुनी होगी ना, तो बिल्ली के गले में घंट बांधने का कोई नहीं करता। इस प्रकार से बच्चे बात बहुत निकालेंगे पर तो करेंगे कौन वो भी नक्की नहीं करते। इसलिए मैं आप बच्चों को चूहे की मीटिंग की बात करता हूँ, सभी बातें बहुत करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी 12 तारीख की मीटिंग में हमने कहा कि ऐसा नहीं है, बात निकली हुई है तो हम कर सकते हैं। हमने कहा कि ठीक है, भ्रष्टाचार के दूर करने का अभियान के लिए हमारे बाबा का जो स्पार्क का विंग बनी हुई है, स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर, जिसका ऊपर 13 नंबर में यार यहाँ पर भी टेलीफोन ऊपर ऑफिस है और आज भी अनाउंसमेंट होता रहता है। तो इस प्रकार से स्पार्क के द्वारा हम मेहनत करेंगे और करेंगे कि हम ऐसा भ्रष्टाचार का दूर करने का अभियान करके लोगों के विकारों, लोगों को बताना चाहिए कि विकार युक्त पे जो भी कर्तव्य है वो एक प्रकार का भ्रष्टाचार ही है। इस प्रकार का भ्रष्टाचार का कारोबार करना चाहिए। आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारी टीचर्स भी बैठी हुई है, आप सब अपने सेंटरों पर जाकर के ये समानता का, इक्वालिटी का कारोबार करें। उसके लिए महिला बहनें आप करें, क्योंकि समाज के अंदर, समाज के माँ बाप हर बच्चे को बीच में, घर बार के अंदर, व्यवहार में, सब जगह पर इक्वालिटी, समानता को धारण करें। तो नया टॉपिक है और इस प्रकार से भ्रष्टाचार का भी नया टॉपिक है, नए प्रकार की ईश्वरीय सेवा है। और भ्रष्टाचार ऐसी चीज है किसी के एरिया में नहीं आती, किसी का स्टूडेंट नहीं है इसमें, बाकी तो झमेला होता है कि मेरा हद है, मेरा सेंटर है, मेरा जिज्ञासु है। भ्रष्टाचार तो यूनिवर्सल है, भ्रष्टाचार कोई भी करता है, कोई भी भ्रष्टाचार जो करने वाला है उसका उसका दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए क्या होगा, इसमें कोई भी प्रकार की हद नहीं रहेंगी, मेरा तेरा नहीं रहेगा, मेरा भ्रष्टाचारी है ऐसा कहेंगे तो हम लज्जा आएंगे, अरे मेरे साथ में कनेक्शन वाला भ्रष्टाचारी है, इसलिए मेरा तो होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार यूनिवर्सल है, सर्वव्यापी है। इंदिरा गांधी कहती थी हिन्दुस्तान में ही भ्रष्टाचार ऐसा नहीं, विदेशों में भी होता है। इस प्रकार से देश विदेश में सब जगह पर इस प्रकार का भ्रष्टाचार होता है, वहाँ अलग प्रकार से होता है, यहाँ अलग प्रकार से होता है। पर इस प्रकार के भ्रष्टाचार दूर करने का अभियान करना चाहिए। लास्ट में एक बात करनी चाहिए, बाबा ने एक बहुत सुंदर एक कल डेफिनेशन दिया हुआ है, ऐसी डेफिनेशन जो है ना बहुत कम बार बाबा ने यूज किया होगा। बाबा ने कल कहा है, बाप दादा चारों ओर के बच्चे जो चात्रक हो सुन रहे हैं, जो चात्रक हो सुन रहे हैं, ये हम बच्चों को चात्रक का टाइटल पहली बार मिला है। आपको किसी को याद हो हाँ कि बाबा ने मुरली में हम बच्चों को चात्रक का टाइटल दिया हुआ कि चात्रक बन हाँ चात्रक हो माने चात्रक बन करके सुन रहे हैं, याद है किसी को? बाबा ने चात्रक चात्रक मालूम है ना, एक लीजेंडरी पंखी है, वो लीजेंडरी पंखी ऐसा है जिसके बारे में ऐसा माना गया है कि जो आकाश से बारिश होती है ना, बारिश में से जो पानी गिरता है ना उसी पानी को पी करके चात्रक जीवन व्यतीत करता है। इसके लिए शास्त्र में श्लोक है, रे रे चात्रक सावधान मनसा मित्र क्षण भवनसा मित्र क्षण भव्याम, अर्थात ये चात्रक पंखी तो तेरे का मित्र बनकर के हम एक बात आपको सुनाते हैं कि अम्बोदा भव वसंती भगने, मतलब आकाश में बहुत से बादल होते हैं, सभी बादल होते हैं परंतु सबसे तो बारिश के पानी की आश मत रखना, थोड़े ही ऐसे बादल होंगे जिसके अंदर से पानी आएगा और तुमको पीने को मिलेगा, बाकी सब जो है ना खाली दिखाओ के बादल होते हैं, तुमको पानी उसमें से नहीं मिलेगा। इस प्रकार से चात्रक के बारे में बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोगों ने संस्कृत साहित्य पढ़ा नहीं है, संस्कृत साहित्य में बहुत से सुंदर ऐसे श्लोक है, रे रे चातक सावधान मित्र क्षणम भव्याम, हम तारे मित्र बनकर के सुनाते हैं, तेरे बहु बात सुनी हुई होंगी, इस प्रकार से चात्रक के बारे में कहा हुआ है। तो कल बाबा ने हम बच्चों को चात्रक कहा और उसका अर्थ क्या होता है कि आकाश में हम अनेक प्रकार के बादल होते हैं, सभी बादलों में से नहीं मिलता है। इस प्रकार से दुनिया के अंदर अनेक बातें हो सकती है, अनेक ज्ञान देने वाले सन्यासी महात्माएं आदि आएंगे, परंतु वो सभी कोई हमारा उद्धार करने वाले नहीं है। हमारा उद्धार करने वाला जैसे कई बादल थोड़े ही बादल में पानी होता है, इस प्रकार से परमात्मा रूपी बादल जो है उसके ही द्वारा हमारे आस जो है प्यास जो है वो हमारी छिप सकती है। इस प्रकार का कारोबार करें तो क्या हो जाएगा। कल जो बाबा ने पहली बार हम बच्चों को चात्रक का डेफिनेशन में बताया हुआ है कि आप बच्चे चात्रक बन करके, वे चात्रक बन करके बाप से जो ज्ञानामृत जो है आपका से बाबा की मुरलियों से टपक रहा है, उस ज्ञानामृत पीने की चात्रक बन करके आश रखिए और वो ज्ञानामृत पी करके जीवन व्यवहार करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अमृत के कारण हम अमर हो जाएंगे। अमर हो जाएंगे माना सत्युगी दैवी दुनिया के अंदर, सत्युग त्रेता युगी दैवी दुनिया में आ सकेंगे। तो इसलिए बाबा ने कल पहली बार, आप सब बराबर पढ़ो मुरली तो ख्याल में आएगा कि बाबा कैसे कैसे नए नए टाइटल्स हमको देते हैं। कल मैंने पहली बार जैसे पिछली मुरली में भ्रष्टाचार पहली बार कहा, इस प्रकार से कल की अव्यक्त मुरली के अंदर पहली बार हम बच्चों को चात्रक बनकर के चात्रक का टाइटल दिया। सोचना इसके ऊपर, तो इसलिए चात्रक कैसे होता है क्या होता है, ये लीजेंडरी बर्ड है और इसके कारण वो जैसे तो इस प्रकार से हम भी इस लीजेंडरी बन जाए, विश्व के इतिहास में हमारा गायन हो, हमारा पूजन हो, इस प्रकार से हम भी ऐसे बाबा ने कहा हुआ है कि आप ऐसा पुरुषार्थ करो कि सत्युग देवता में आपकी प्रजा हो और द्वापर कलयुग में आपका पूजन हो। एक प्रजा ऐसा पुरुषार्थ करो सत्युग देवता में आपकी प्रजा बने और द्वापर कलयुग में आपका पूजन करे। प्रजा और पूजन एक में है, प्रजा सत्युग देवता में है, प्रजा और द्वापर कलयुग में है हमारा पूजन, तो हम ऐसा कर्तव्य श्रेष्ठ कर्तव्य करें कि हमारा पूजन भी हो, हमारा गायन भी हो द्वापर कलयुग में और सतयुग में हमारा हमारी प्रजा हो, क्योंकि हरेक को अपनी राजधानी स्थापन करना हो तो उसमें प्रजा तो चाहिए। तो बाबा यही कहते हैं कि हरेक को अपनी प्रजा, उसका रचयिता बनना है, उसकी रचना करनी है बाबा के ज्ञान के आधार पर। तो इस प्रकार से कल की मुरली जो है बहुत ही छोटी थी, बाबा का व्यवहार जो था छोटा था, परंतु बहुत कुछ सीखने के लिए बाबा ने बताया हुआ था कि कैसे खुशनुमा रहना चाहिए, खुशनुमा बनने के लिए क्या करना चाहिए। देश विदेश के बहन भाई बाबा कैसे बोल सकते हैं और हम कैसे बोल सकते हैं, इस प्रकार की बातें सुनाई बाबा ने। और फिर हम बाबा ने कहा चात्रक बनकर, तो चात्रक का नया टाइटल बाबा ने हम बच्चों को कल दिया। तो इस प्रकार से नई नई बातों को स्वीकार करो और खुश होना चाहिए कि देखो आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा। नई बातों को देख करके सबको खुशी होनी चाहिए। तो नई बात, नए टाइटल, नए लक्ष्य इस प्रकार से बाबा देते हैं, उसको जीवन में धारण करने का प्रयत्न करें तो क्या होगा, ज्ञान की सच्ची गहराई हमारे हाथ में आएंगे। और ज्ञान की सच्ची गहराई बाबा ने भी मुरली में कहा है कि जो रत्न होते समुद्र के नीचे में होते, ऊपर नहीं होते। तो हम ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो ज्ञान के अंदर जो रत्न जो है, छिपे हुए रत्न है, उसको हम धारण कर सकेंगे और हमारा जीवन जो है उसको हम श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो इसलिए अंत में तो यही मैं सब आप सबको कहूंगा कि हम सब बाप दादा के ज्ञान के आधार पर, योग के आधार पर और धारणाओं के पुरुषार्थ के आधार पर ऐसी सेवा करें कि हमारी सतयुग की और त्रेता युग की प्रजा हो जाए और द्वापर कलयुग के हमारे भक्त हो जाए, हम सबके ज्यादा में ज्यादा प्रजा का सदस्य बने और हम सबका ज्यादा में ज्यादा भगत बन करके हमारा गायन और पूजन करें, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हम सबका हो। यही शुभेच्छा, यही भावना और यही कर्तव्य है, ऐसा मैं समझता हूँ। ओम शांति।